नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया, आपका खर्चा आपकी चर्चा। हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में दो हफ्ते बाद मेरी वापसी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि शार्दुल ने आप लोगों तक चर्चा अच्छे से पहुंचाई होगी। मैंने सुना भी एक एपिसोड, थोड़ा व्यस्तता थी तो इधर बीच काफ़ी ट्रैवल करना पड़ रहा था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। आज की चर्चा उम्मीद है बहुत अच्छी जानकारी भरी होगी। मेरे साथ बहुत अच्छा एक पैनल है। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट हैं नितिन सेठी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव से जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक सदस्यों में हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका।
शुक्रिया बुलाने के लिए।
और इसके अलावा रिपोर्टर्स कलेक्टिव से ही नितिन की सहयोगी हैं तपस्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत चर्चा में।
थैंक यू।
और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट फ्रीलांस जर्नलिस्ट रवि प्रकाश। रवि रांची में रहते हैं और आप लोगों को पता होगा पिछले हफ्ते झारखंड से बड़ी सनसनीखेज खबर आई, दुखद खबर आई। एक विदेशी जोड़ा था, ब्लॉगर था जो कि भारत के दौरे पर था, ट्रैवल कर रहा था, उनके साथ मारपीट हुई, बलात्कार हुआ। उस मामले में काफ़ी लोग शामिल थे, गैंग रेप की बात सामने आई है, चार पांच लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। तो रवि से हम इस पूरे मामले की विस्तार से जानकारी लेंगे। ख़ासकर इस मौके पर एक बड़ी विडंबना है, जो कहते हैं कि एक आयरनी की स्थिति है। आज 8 मार्च है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है, और हम बात करेंगे उस समय हमारी बातचीत का केंद्र जो है वो एक महिला के साथ, एक विदेशी महिला के साथ रेप बलात्कार की घटना है। तो एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में कई सारे सवाल हैं जिनसे हमारा सामना होगा। और एक छोटा सा मैं डिस्क्लेमर या आप कहें उसको स्पष्टीकरण सामने कि इस पैनल में कायदे से महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए था, तो तपस्या को ज़्यादा बोलने का मौका मिलेगा क्योंकि वो एक पूरी 50% जो आधी आबादी है उसको अकेले यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे इस मुद्दे पर। तो आई होप सम इनसाइटफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू तपस्या। एक दो जानकारियाँ हैं, घोषणाएँ हैं, जल्दी से मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। पिछले कुछ दिनों में हमारे ऐप और वेबसाइट पर जो पॉडकास्ट हैं उनको एक्सेस करने में लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही थी। कुछ अटैक्स थे, कुछ हैक हुआ था, कुछ उसमें समस्या इस वजह से आ रही थी। तो अब उसको धीरे धीरे हमने दूर करने की कोशिश की है। उम्मीद है अब आपको इसको इस्तेमाल करने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आएगी। हफ्ता और चर्चा इस हफ्ते इसलिए हमने फ्री कर दिया है, पेवॉल से बाहर कर दिया है, क्योंकि पेवॉल के पीछे जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है, उसमें कई तरह की दिक्कतें और बग्स क्रिएट किए गए थे। इसके जो वजह से आपको दिक्कतें हुई उसके लिए हमें खेद है। हमारा इलेक्शन जो फंड है वो इस बार कोई एक बड़ा, क्योंकि देश का पूरा चुनाव है 2024 में, लेकिन हमने कोशिश की है कि एक बड़ा कोई इलेक्शन फंड ना बना के छोटे छोटे कई सारे अलग अलग फंड अलग अलग मुद्दों पर केंद्रित बनाने की कोशिश की है। और आप उन छोटे छोटे जो भी आपकी पसंद के मुद्दे हैं, आपकी पसंद के इश्यूज़ हैं, उनको फोकस करके उन इलेक्शन इलेक्टोरल चुनावी फंड को आप हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। एक एनएल सेना प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मोदी 2.0 रिपोर्ट कार्ड। मोदी का जो पिछला पूरा 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कौन सी योजनाएं थी, कहां 2019 में देश खड़ा था और 19 के बाद से 24 तक वो कहां पहुंचा है, अलग अलग उनकी जो स्कीम्स के ज़रिए, आंकड़ों के ज़रिए, संस्थाओं के जो इंडिपेंडेंट शोध हैं उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बात कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है। आप लोगों को पता है लेटर्स को लेकर बार बार हमें कहना पड़ता है, कई बार बीच बीच में आप लोगों के लेटर आने बंद हो जाते हैं। इस हफ्ते 2 लेटर्स आए हैं, उनको मैं पढ़ूंगा भी। तरीका एकदम सीधा है, आप या तो सीधे www.newslaundry.com/podcast-letters पे जाकर अपने लेटर्स भेजें और उसमें सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर लिखें कि ये एनएल चर्चा के लिए है। दूसरा तरीका और भी आसान है कि आप सीधे हमें मेल कर दें, podcasts@newslaundry.com और सब्जेक्ट लाइन में एनएल चर्चा लिखें। ये हैं, और जल्दी से मैं जो इस हफ्ते की सुर्खियाँ हैं उनके बारे में। शार्दुल की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई तो वो इस चर्चा में आखिरी वक्त में शामिल होने से रह गए। उनको आना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन तत्काल करने में सक्षम नहीं है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो असंवैधानिक हैं, अवैध हैं, और 2019 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं उन सब की जानकारी वो चुनाव आयोग को दे और चुनाव आयोग उसको अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि इतनी जल्दी वो नहीं दे सकते, 30 जून से पहले नहीं दे सकते। इसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक और स्टोरी आई है, एक और रिपोर्ट आई है, और अगर आप लोगों को मैं याद दिलाऊं तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उसकी गड़बड़ियों की, उससे उसके लीगल जो खामियां थी उससे जुड़ी एक पूरी सीरीज 7 पार्ट की थी हमने, उस वो आप न्यूज़ लॉन्ड्री की हिंदी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं, जिसमें नितिन ने और इनके सहयोगियों ने बहुत सारी जानकारी इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हमारे सामने रखी। तो उसकी जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में के आदेश में साबित हुई हैं वो बातें उस पूरी सीरीज़ में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हुई थी, ये बात है 2-3 साल पहले की। तो नितिन से और तपस्या से इनकी इस रिपोर्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे, हम जानेंगे कि ये जो पूरा SBI का नया दांव है ये कितना सही है, उसमें कितनी चाल है, कितनी ईमानदारी है। बीजू जनता दल नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, 15 साल के बाद अब फिर से उन्होंने NDA में आने की घोषणा की है, ऐलान किया है, इससे पहले वो NDA से अलग हो गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा को नागपुर जेल से आज़ाद कर दिया गया है, उनको माओइस्ट लिंक के संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, 10 साल उन्हें इस दौरान जेल में रहना पड़ा, अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये एक स्थिति है हमारे देश की जुडिशरी और लीगल सिस्टम की और साथ में सत्ता के हनक की, कि कैसे आपकी ज़िंदगी के 10, 15, 20, 25 साल बिना किसी अपराध के भी बर्बाद किए जा सकते हैं। BJP ने अपनी 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की है, इसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, मोदी फिर से बनारस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी शुरुआती एक लिस्ट जारी की है। एक और घटना हुई इस बीच में, RJD के जो पूर्व सुप्रीमो, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उनके परिवार को निशाना बनाया था कि एक आदमी जिसका कोई परिवार नहीं है वो कैसे किसी के प्रति मान, तमाम चीज़ें थी। इसके बाद उसको मुद्दा बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की है कि इसको पूरे देश का मुद्दा बनाया जाए, और इसमें उनके सहयोगी जो हैं, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, जो सांसद हैं, जो तमाम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ट्विटर हैंडल जो एक्स हैंडल है उनका, उस पर मोदी का परिवार नाम से उसको अपने ट्विटर हैंडल को ऐड कर दिया है, मोदी का परिवार पूरा देश, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर वो करते हुए, एक तंज कसते हुए उनके उन तमाम नेताओं की एक लिस्ट जारी की है और उसके पोस्टर शहर में लगे दिल्ली में, जो किसी न किसी रूप में आपराधिक मामलों में आरोपित हैं। मसलन पीलीभीत से, लखीमपुर खीरी से जो गृह राज्य मंत्री हैं टेनी, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में हैं। इस तरह के तमाम नेता हैं जिनका नाम इसमें शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट जारी किया है, इसके तहत आतिशी जो कि उनकी वित्त मंत्री हैं इस समय, उन्होंने दिल्ली असेंबली में बजट पेश करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, और 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह का एक सहायता, आर्थिक सहायता देने की एक योजना शुरू की है। इसको लेकर एक बार फिर से अब आरोप प्रत्यारोप खींचतान शुरू हो गई, देखते हैं यह कैसे अमलीजामा इसको पहनाती है आम आदमी पार्टी की सरकार। उत्तराखंड सरकार जो कि उत्तराखंड की सरकार, आपको याद हो कुछ दिन पहले उसने देश में UCC लागू करने वाली पहली सरकार थी, अब उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया है, और उस ऑर्डिनेंस अध्यादेश का मजमून ये है, लबोलवाब ये है कि अगर कोई दंगा फसाद करता है तो उससे हर्जाना वसूला जाएगा। इसका नाम है उत्तराखंड पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी एक्ट ऑर्डिनेंस 2024, अभी इसको पास होना है, लेकिन ऑर्डिनेंस के रूप में इसको जारी करके इसको लागू करने की कोशिश की गई, और इसमें कुछ बहुत चिंताजनक चीज़ें हैं। मसलन पुलिस तय करेगी कि दंगा किसने किया, और फिर पुलिस तय करेगी कि उसकी भरपाई कैसे होनी है, उसका हर्जाना कितना है वसूली करने की। इस पूरी प्रक्रिया में मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि इस तरह के जो कानून हैं, एक तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया है, कोई अपराध हुआ, कोई घटना हुई, उसके बाद पुलिस की भूमिका आती है जांच की, जांच एजेंसी के रूप में, उसकी पुख्ता सबूतों के आधार पर जांच करती है और फिर वो चीज़ें कोर्ट के सामने, जज के सामने पेश होती हैं। जज उसके आधार पर एक निर्णय देता है, सज़ा देता है, क्या उसमें किस तरह की भरपाई की जानी है, उसमें किस तरह की सज़ा दी जानी है व्यक्ति को, है कि नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इस तरह के जो कानून बन रहे हैं या बनाए गए हैं, या ये इसको कहा जा रहा है कि अब तक पूरे देश का सबसे सख्त कानून है ये, जो कि पुलिस को इतना अधिकार देता है कि सीधे पुलिस आपके घरों पर अब कानूनन बुलडोज़र चला देगी, आपसे वसूली करेगी, आपके पास है कि नहीं है संसाधन, लेकिन आपसे, और सीधे पुलिस ही ये तय करेगी कि आप इस मामले में जवाबदेह हैं या आप इस मामले में शामिल रहें। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है कि पुलिस, मतलब एक जुडिशियल सिस्टम में जो काम जज का है, वो अब थाने में बैठा एक थानेदार तय करके और आपसे वसूली हर्जाना, और ये इसमें एक सामाजिक एंगल भी है, जो सोशल सोसाइटी का एक इशू है कि आपके घर के ऊपर चस्पा कर दिया था कि आप अपराधी हैं और आपसे ये वसूली होगी, आप तड़ीपार जैसे हो गए, ये इसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों में भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको देखते हुए मैं एक छोटा सा कमेंट आप लोगों से चाहूँगा कि इस तरह के कानूनों को कैसे देखते हैं।
आई थिंक कानून तो बहुत ड्रैकोनियन है और ये तो होता आ रहा है इस गवर्नमेंट के अंडर, बहुत सारे डिमोलिशंस हुए हैं
जी।
तो बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट तरीके का है जहाँ पे जुडिशरी की ज़रूरत नहीं है और सीधे जो पॉलिटिकल क्लास है और जो एग्जीक्यूटिव है वो एक्शन ले सकता है। तो आई थिंक ऐसे कानून बन रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, एंड दिस एक जो एक ट्रायल होता है वो
प्रोसेस
पूरा ड्यू प्रोसेस होना चाहिए और दिस शुड नॉट बी डन।
मतलब हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी पे भी बहुत हमें रिलाय करते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि जुडिशरी हमेशा बहुत अच्छा करती आई है लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए। तो मुझे तो लगता है कि एकदम जो इम्पेशेंस है सरकारों में कि उस रास्ते भी नहीं, दो दिन भी उस रास्ते नहीं चलना कि चलिए जज साहब के यहाँ से कुछ एक अच्छा ऑर्डर ही निकलवा के करवा ले, किसी का घर तोड़वाना ही है सरकार को, तो उतनी इम्पेशेंस बन गई है कि वो प्रिटेंस भी नहीं रखेंगे अब। कम से कम पहले का एक तमाशा तो करते थे कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ से चल रहे हैं, वो इम्पेशेंस और एक एरोगेंस की करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना कोई हमें रोकेगा अगर हम ऐसे कानून पास करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं
जी।
तो हमें रोकने वाले भी लोग नहीं हैं, ना जुडिशरी में ना बाहर। आई थिंक वो एरोगेंस मुझे सबसे ज़्यादा खलती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में गलत कानून पहले नहीं बने। आफ्सपा था, इससे भी बुरा था, मकान ही नहीं तोड़े जाते, लोगों को मार दिया जाता था। तो कानून रहे हैं पर एक समय था कि कम से कम उन कानून को बनाने वाले भी शर्मिंदा होते थे, थोड़ा एक्सक्यूज देते थे कि क्यों ये खास कानून बना रहे हैं। बोला जाता था कि एक टेरर एरियाज में हम सिर्फ ऐसे खास कानून लाते हैं जब खास आपदाएं हैं, खास मुश्किलें। अब वो पर्दा भी उतार दिया गया है, अब है कि आप किसी भी किस्म के आम जिंदगी जी रहे हों, अमूमन कुछ और खास ना हो रहा हो, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वैसे ही कानून होंगे जो एक मिलिटराइज्ड एरिया में होते थे कि किसी को भी पकड़ लिया, किसी का भी घर तोड़ दिया, 10 साल बाद देखा जाएगा कि वो सही तोड़ा था कि गलत तोड़ा था, मुआवजा होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा। अब मुआवजा सिटीज़न से लिया जाएगा, मतलब मुआवजा सरकारें देती थी गलत काम करने का, अब उल्टा है कि सरकार की जगह सिटीज़न मुआवजा देंगे सरकारों को अपनी हरकतों पर चलने के लिए। तो मतलब आई थिंक तपस्या ने बहुत पोलाइटली बोला, क्योंकि बोलती पोलाइटली है कि ये परेशानी वाली चीज़ है, पर उससे बहुत खतरनाक है।
एक शेर है किसी गुमनाम शायर का कि गोरे रहें या काले हमें फ़र्क क्या, अपने लिए आज़ादी स्वप्न झूठा, पहले ये रंज था कि गैर लूट रहे हैं, अब इतना सा एक भरोसा है कि अपनों ने हमें लूटा। तो अगर सरकार वसूली पे आ जाए कि आपसे हम वसूली करेंगे, मेरे ख्याल से ये अंग्रेज़ों के बाद तो इस तरह के कोई कानून नहीं रहे होंगे कि अंग्रेज़ों ने वसूली की प्रक्रिया चलाई थी लोगों के अंदर डर पैदा करने के लिए, क्योंकि उनकी सिटीजनरी नहीं थी, वो उसको दूसरे नज़र से देखते थे, तो इनके ऊपर सजाएं थोपना, गाँव के ऊपर पेनाल्टी लगाना, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के ज़माने में तो बहुत आम बात थी। ये हमारी चुनी हुई सरकार इस तरह के कानून लगा रही है, इस तरह के आरोप कानून बना रही है। रवि, आप इस पर क्या कहेंगे?
देखिए, जो अपने देश का कानून है ना, इसमें हर जाने की व्यवस्था या कोठी जब्ती की व्यवस्था, मतलब घर तोड़ने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं थी और ठीक ही कहा नितिन ने और आया तपस्या जी ने आपने भी कि उसका एक प्रोसीजर था, ट्रायल होता था, कोर्ट में लंबी सुनवाई होती थी, फिर कोर्ट डिसाइड करता था। अब क्या है कि जो उत्तराखंड सरकार ने किया है या उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर ऐसा हुआ कि आपने बुलडोजर चला दिया, किसी का घर तोड़ दिया, किसी को हर्जाना करेंगे या फाइन करेंगे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी सुनवाई के, तो किसी भी जमहूरियत वाले देश में जहाँ प्रजातंत्र की बात आप करते हो और हम ये कहते हैं और हैं भी कि हम सबसे पुराने प्रजातांत्रिक देश हैं, अगर वैशाली में लक्ष्मियों का शासन नहीं होता तो पता ही नहीं होता गणतंत्र में कुछ होता है, और इस देश में ऐसी बात हो रही है, तो मुझे तो लगता है कि ये खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए।
ठीक जी, एक और खबर जल्दी से, मैं दो तीन और वो हैं जो कि झारखंड के दुमका से एक खबर आई, जो मैंने बताया कि स्पेन के का एक जोड़ा था जो कि भारत के दौरे पर था, उनको 7-8 लोगों के एक झुंड ने घेर लिया और उसके बाद 2.5 घंटे तक उनके साथ ज़बरदस्ती हुई, उनके साथ गैंगरेप हुआ, मारपीट हुई, इसमें से 3-4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, क्या स्थिति है हम अभी बात करेंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर से नई सरकार बनी है, शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनको PPP का समर्थन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। विदेशों से ही एक और खबर मालदीव से है, मालदीव ने चीन के साथ एक मिलिट्री असिस्टेंट एग्रीमेंट साइन किया है, इसके तहत अब वो फ्री मिलिट्री असिस्टेंस एग्रीमेंट है जो कि जिसके तहत चीन सैन्य सुविधाएं सहायता उपलब्ध करवाएगा मालदीव को, और लगे हाथ मालदीव ने मई तक भारत की जो सेना थी या यूनिट्स वहां पर थी उसको, नेवी की, उसको बाहर निकल जाने का टाइम भी दिया गया है। बेंगलोर में एक खबर आई, रामेश्वरम कैफे बेंगलोर का था, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो संदिग्ध है वो अभी फरार है, उसके बारे में जानकारी ये आई है कि उसने ब्लास्ट के बाद वहाँ से निकल कर कहीं पर कपड़े बदले और फिर एक बस की सवारी की, देखते हैं अभी इस मामले में बहुत जानकारी आना बाकी है। उत्तराखंड में एक आशुतोष नेगी नाम के एक जर्नलिस्ट थे, और अगर आप लोगों को याद हो कुछ दिन पहले अंकिता भंडारी नाम की एक लड़की थी जिसका जिसकी जिसने आत्महत्या कर ली थी, और उस बाद में पता चला कि उसकी हत्या हुई है, और एक रिजॉर्ट था जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का था, वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ और ऐसे कामों के लिए मजबूर किया गया जिससे परेशान होकर अंकिता भंडारी ने आत्महत्या कर ली थी। उस मामले में बढ़ चढ़ कर अंकिता भंडारी के परिवार का साथ देने वाले आशुतोष नेगी को पुलिस ने एक अलहदा एक अलग केस में गिरफ्तार किया है STSC एक्ट के तहत। ये कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी वाले मामले में चूंकि वो बहुत मुखर थे और बहुत खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उस नेता उनके बेटे की का को खिलाफ खबरें कर रहे थे, जानकारियां मुहैया करवा रहे थे, इसलिए उनको STSC एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, ये एक तरह का दिखावा है। लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन का कहना है पौड़ी के कि ये बात सही नहीं है, उनको उनके खिलाफ जो मामला था वो एक अलग मामला था और काफ़ी पहले से चल रहा था और उस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा 2 और लोगों की भी गिरफ्तारी उस मामले में हुई है। तिपरा मोथा ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वहाँ पर उसको उसमें शामिल हो गई है, एक तरह से NDA का हिस्सा बन गई है। तो 2 घटनाएं हो गई हैं इस तरह की, तिपरा मोथा और BJD। जो ये सुर्खियाँ थी, सबसे पहले हम दुमका वाली घटना की ही बात कर लेते हैं, इसके बाद चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मसला है जो SBI से जुड़ा और साथ में जर्नलिस्ट जो हैं उनके गिरफ्तारी और उसका भी मसला है। रवि, आप थोड़ा सा अगर हमें बता पाएं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे, क्या क्या हुआ और अभी क्या स्थिति है इस मामले में, और जो पुलिस की भूमिका कितनी साफ सुथरी और नियम कानूनों के तहत आपको देखने को मिली?
देखिए, दुमका का जो मामला है ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कोई घूमने आया बाहर से और उसके साथ रेप या गैंगरेप जैसी वारदात हो जाए। लेकिन इसका एक पॉजिटिव अपडेट ये है कि 1 मार्च को वो स्पेनिश ब्लॉगर जो थी उनके साथ रेप हुआ था, 1 मार्च की रात को, और 2 दिनों के बाद ही पुलिस ने सभी 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया, उसमें कोई फरार नहीं है। अच्छा। पहले जो बयान हुआ था उनका स्टूडिस्ट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 7 लोगों ने उनके साथ रेप किया था, बाद में ये 164 बयान होता है, हम सब लोग जानते हैं कोर्ट
जी, जी।
उसके बाद उनका पुनर्बयान कराया गया जो 161 के तहत होता है। जो पुनर्बयान हुआ उसमें 8 लोगों की बात आई, सहयोग और गैंगरेप मिल के, तो पुलिस ने 8 को अरेस्ट कर लिया, एक अच्छी बात हुई। दूसरा एक ठीक ये हुआ कि जब द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी राष्ट्रपति हैं, जब राज्यपाल हुआ करती थी झारखंड की, तब झारखंड सरकार ने और द्रौपदी मुर्मू जी की पहल पे ये हुआ था कि यहाँ पे एक झालसा बनी थी, लीगल एक सपोर्ट देने के लिए कि जो जो मुजरिम है या जो जिनके ऊपर कंप्लेन है या जो कंप्लेन कर रहा है उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे मामले सुलझाए गए। फिर राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी जी ने ये बात कही थी राष्ट्रपति भवन एक समारोह के दौरान, तो झालसा है तो झालसा की इंटरफेरेंस करने पर यहाँ पे 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने महिला को दिया है।
अच्छा,
जो झारखंड राज्य कंपनसेशन स्कीम है कि ऐसी घटना अगर होती है तो उसमें 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम मुआवजा सरकार देती है। तो वो 10 लाख
सबको मिल जाता है या केवल इसी मामले में विशेष वो देखने को मिला?
सबको नहीं मिलता, इसमें झालसा जो है जो लीगल अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट की वो पहल करती है, स्टेट में भी अथॉरिटी है वो पहल करती है, फिर एक कमेटी है जो जज करती है कि क्या करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं सामान्य तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं, जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज अवेलेबल नहीं है वहां कोई और होता है लेकिन वो लीगल एंटिटी का ही होगा तो वो तय करता है। तो दुमका में वहां के जो प्रिंसिपल जस्टिस थे वो इसको लीड कर रहे थे तो उन्होंने पहल की थी, तो ये सरकार ने दे दिया पैसा उनको। और अब जो है वो दोनों वाइफ हस्बैंड यहाँ से निकल गए, उनको नेपाल जाना था। एक साहस की बात, क्योंकि महिला दिवस पर हम लोग ये बात कर रहे हैं
जी।
तो ये एक थोड़ा साहस की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने अपना वर्ल्ड टूर का जो प्रोग्राम था उसको रोका नहीं है, वो नेपाल चली गई बिहार के रास्ते। और पुलिस ने झारखंड की जो पुलिस है उसने झारखंड की सीमा पर उनको वो किया सिक्योरिटी दी, उसके बाद बिहार की पुलिस ने उनको बिहार की सीमा में सिक्योरिटी दी, अब वो नेपाल चली गई है। तो उसके बाद उनकी वो कहानी है। प्रोसेस सरकार ने यहाँ पे ये किया है, जो वहाँ के स्टेंट ऑफ पुलिस थे दुमका के या जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं, मतलब यहाँ डीसी होते डीएम की बजाय, तो अब ट्रायल कोर्ट में वो मामला चलेगा। सारे लोग अरेस्ट हैं, मैक्सिमम ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। सपोर्ट पुलिस को इसलिए मिला क्योंकि क्योंकि वो लोग लेडी जो थी वो हेलमेट जो लगाती है उनमें कैमरा लगा होता था, वो ट्रैवल करती थी लगातार।
अच्छा।
मतलब आप सोचे ना 66 देशों में उन लोगों ने यात्रा की, अभी तक 1,70,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, भारत में 14,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की बाइक से, दो अलग अलग बाइक से उनकी। तो उनके कैमरे में तस्वीरें आ गई थी जब वो लड़की गए थे, जो ट्राइबल्स हैं और उनका कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है क्रिमिनल, तो उन लोगों ने उनको देखा था तो उन्होंने बात बात की थी हेलो फ्रेंड्स वगैरह करके थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी में, उस दौरान तस्वीरें कैप्चर हो गई थी। तो जब बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो तस्वीरें क्योंकि सामने में थी, गांव पता था गांव कहाँ पे है, एक लड़के ने जो पहले ही रात मतलब 1 तारीख की रात जिस दिन घटना हुई है उस रात ही अरेस्ट हो गए थे 3 लोग, उसमें से एक लड़के ने कन्फेस करके सारे लोगों के नाम वाम भी बता दिए, तो नाम पता पहले से पुलिस को मालूम था, तस्वीरें मिली गई, तो ये थोड़ा सा सॉल्व करना आसान रहा पुलिस के लिए और ये हुआ है।
ठीक,
तो अपडेट ये है
क्योंकि ये जानकारियां हैं और रविन बताया कि 65-66 देशों की यात्रा कर चुके थे ये लोग अब तक, और 2 लाख किलोमीटर के करीब यात्रा कर चुके थे इसमें पिछले 5 सालों के दौरान। एक जो चीज़ समझ में आई मेरे, रवि आप बताएं कि ये जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इनमें ज़्यादातर लोग आदिवासी हैं?
सब लोग आदिवासी हैं। एक गांव है कुड़माहाट इलाका है, हंसडीहा थाना है
जी जी,
दुमका जिले का, तो रिमोट है, तो गांव के ही लोग हैं। कुछ लोग इनमें से जो थे वो बाहर नौकरी करते थे केरल वगैरह में, तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी इनको आती है कि वो कुछ कन्वर्स कर सकें आपस में। तो जब ये लोग टेंट वेंट के लिए गए थे वहां पे दोनों वाइफ हस्बैंड के, टेंट कहाँ लगा के रात बिताई जा सकती है क्योंकि उनको ट्रैवल करना था भागलपुर के लिए जिस रास्ते वो जाते नेपाल, तो तब इन लोगों ने अप्रोच किया था हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं, मतलब जो बात बात पूरी हुई थी, तो उनको ये पता था कि ये लोग आज रात यहाँ स्टे करेंगे। फिर लोग चले गए और ये लोग जब आके वहाँ इन लोगों ने अपना कैंप लगाया वहाँ पे टेंट डाला, तो फिर दोबारा वो लोग आए घूमने उमने लगे, तो थोड़ा डाउट इनको हुआ। लेकिन सोने के बाद जब ये लोग सो गए थे तो पहले 3 लोग आए, फिर बुलाया और लोगों को, और फिर मारपीट की, क्योंकि जब तक आप मारेंगे नहीं किसी को तो आप किसी से अपराध नहीं कर सकते, तो एक हैवॉक क्रिएट करना
मारपीट करने के लिए,
हाँ डर पैदा किया। फिर उनको उनको घसीट के ले गए उस लेडी को थोड़ी दूर पे, उसके हस्बैंड के हाथ को बांध दिया और फिर उनका उनका उनके साथ मतलब ये जो रेप की घटना हुई वो हुई है, और ये पहली बार हुआ झारखंड में
जी जी
किसी फॉरेन लिसनर्स के साथ जो है रेप हो, ऐसा कभी हुआ नहीं।
ये इसीलिए मैं पूछ रहा था रवि और आपसे भी नितिन, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप भी एक ऐसे इलाके को जानते हैं जहाँ से ताल्लुक रखते हैं अरुणाचल, आमतौर पर पैट्रियार्की जो है वो मेनलैंड इंडिया जो नॉर्दर्न या इंडिया का हिस्सा है वहाँ पर पैट्रियार्की इस तरह से है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको देखा है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी को आमतौर पर इस तरह से देखा जाता है कि वहाँ पर मैट्रियार्की भी होती है, महिलाएं पावरफुल होती हैं और ये खासकर ट्राइबल इलाकों में रेप जैसी चीज़ें बहुत ही कहें कि अपवाद जैसी होती हैं, बहुत रेयर होती हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से पैट्रियार्की के लिहाज से देखें तो ट्राइबल एरियाज की स्थिति थोड़ी बेहतर समझ में आती थी। इसीलिए मैंने ये पूछा कि ये जिन लोगों ने अपराध किया है वो उस हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके बावजूद ये घटना हमारे सामने आई है।
हाँ, इसमें मेरे ख्याल से दो तीन आयाम है अतुल जिस पर हमें सोचना चाहिए। ये मतलब एक पर्टिकुलर एपिसोड जो घिनौना एपिसोड है, इसके आगे जाके जो आप जिस तरह से आप बातचीत को आगे ले जाना चाह रहे हो सोसाइटी के ऊपर एक तरीके से हमारा क्या रिफ्लेक्शन बनता है उसके बेसिस पे। एक एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि आपने मेरे पे इसलिए रेफरेंस दिया क्योंकि मेरे कुछ रिश्ते नॉर्थ ईस्ट में हैं, शायद इसलिए आप कह रहे थे। तो एक वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी, मेनलैंड इंडिया की आदिवासी सोसाइटी और अब हमारे बाकी समुदाय देश के सबके अपने अपने रेंज है। मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोचता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसा नहीं कि कहीं पे मेट्रियाकी है, पर अलग अलग किस्म की और अलग अलग डिग्रीज की पेट्रियाकीज हैं। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे हिंदुस्तान में कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में जहाँ मर्द
पूरी तरह से महिलाओं के तक,
हाँ मतलब वो हक बहुत अलग अलग किस्म से अलग अलग लेवल तक सप्रेस्ड है। और अगर आप हिंदुस्तान के आदिवासी इलाके देखें तो जो उनका एक मूल प्रिंसिपल जिनसे आप आदिवासियों को बाकी से अलग मानते थे, मतलब वो भी एक पूरी कंट्रोवर्सी है कि अलग क्यों कहलाए जाते हैं, हमको ट्राइबल ट्राइबल क्यों होते हैं और बाकी अलग क्यों होते हैं, लेकिन वो मूलभूत जो एक प्रिंसिपल्स थे वो तो बहुत समय से आदिवासी इलाके या सेंट्रल इंडियन बेल्ट्स में हल्के हल्के उतरते ही रहे हैं। बट वो उतरे ना उतरे, मेरे ख्याल से साउथ एशिया और इंडिया में खास करके पेट्रियार्की और मर्दों का एक अजीब सा एक क्या बोलूँ, एक पर्वर्सिटी जहाँ आप महिलाओं को प्रॉपर्टी और सब्जेक्ट की तरह देखते हैं,
ये तो एक कॉमन
थ्रेड है। मतलब ये एक चीज है जो अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को पूरे इंडिया में बांधता है। अलग अलग डिग्रीज हैं और सोसाइटी, कहीं सोसाइटी कम्युनिटीज जहाँ छोटी हैं वहाँ पे शायद थोड़े सेफ गार्ड्स बन जाते हैं कभी कभार, पर मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि नॉर्थ ईस्ट हो चाहे आदिवासी एरिया हो चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया, कोई इतना फर्क बहुत ऐसा नहीं है कि वहाँ पे महिलाएं कहीं बहुत आज़ादी से भी रहती हैं। डिफरेंट डिग्रीज, हाँ जैसे मैं बोलूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में जितना मेरा एक्सपीरियंस है कुछ इलाकों में महिलाएं थोड़ी आज़ादी से घूमती हैं, थोड़ा ज़्यादा आज़ादी, पर वो थोड़ी ही है, बहुत गुंजाइश है उसमें भी।
ठीक बात है, तपस्या आपकी इस पूरे लिहाज से पहली कॉमेंट्री।
मेरे को ये सब सुन के तो दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं। एक तो कि केस टू केस बेसिस पे कौन से ऐसे केसेस हैं जिनको इतना अटेंशन मिलता है और कौन से केसेस हैं जिनको नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ एक्शन के मामले में भी जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है टुवर्ड्स दीज केसेस वो किस केस में ज़्यादा रहता है किस में कम रहता है। आप देख सकते हैं उनके अपने MP हैं जो आराम से घूम रहे हैं, और कुछ केसेस में जैसे आपने भी एक केस बताया उत्तराखंड का, तो केस टू केस बेसिस पे देर इज़ डिग्री ऑफ एक्शन भी वेरी करता है। और इसमें जो मेन मुद्दा रहता है वो विमेन सिक्योरिटी नहीं होता है, वो आसपास की पेरिफेरल चीज़ें होती हैं कि हमारा इससे इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और एक और जो चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस एपिसोड में डिसगस्टिंग लगी वो था वो कॉम्पेंसेशन देके इमेज सोशल मीडिया में डालना, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। दैट इज़ अ प्योरली डिसगस्टिंग थिंग टू डू ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और द अथॉरिटीज़। आपका एम ये है कि आप जो भी हुआ है
उस पर कर दें किसी तरह,
हाँ आप उस पर कार्यवाही करें और जो भी whatever जस्टिस इज दैट happens, बट ये फोटो लगा के सोशल मीडिया में घुमाना दैट इज़ सॉर्ट ऑफ अ काउंटर टू जो सोशल मीडिया अटेंशन मिला है।
ये बिल्कुल इस चीज़ की बड़ी आलोचना हो रही है, एक तो ये कि जो पैसा दे के चीज़ों को रफा दफा करने की एक प्रवृत्ति, और दूसरा जो विक्टिम की तस्वीर को उजागर करना, ये इन दो लिहाज से एक बड़ा इंसेंसिटिव चेहरा सामने आया है रवि। तपस्या जिस ओर इशारा कर रही है, मैं उसको थोड़ा सा और उस पर आपकी राय जानना चाह रहा हूँ एक आंकड़े के साथ, कि 2023 का जो झारखंड पुलिस का आंकड़ा है वो बताता है कि करीब 14-15% का जंप हुआ है रेप के मामलों में। 1615 मामले 2023 में हुए हैं, जो कि 2022 के और 2021 के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, बढ़े हैं। रवि
देखिए, जो पहले मैं उस पर आता हूँ जो कंपोजिशन वाली बात है, कि ये बिल्कुल खराब बात थी, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी कि डिप्टी कमिश्नर के पोस्ट से उनके हैंडल से ऐसा डाला जाएगा
जी।
तो उन्हें तस्वीर डाली, वो एक वीडियो जिसको बाद में एनआईए ने रिलीज भी किया, जिसमें उनके चेहरे तो ब्लर है लेकिन वो बता रहे हैं हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ये प्रोसेस है, पहले भी लोगों को मिला है यहाँ पे, तो वो आम मतलब वो कोई खराब बात नहीं, वो मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसको इलैबोरेट किया गया, जो सोशल मीडिया पर डाला गया, ये गलत। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात हम करते हैं रेप केसेस की और जो ट्राइबल्स के बारे नितिन भी कर रहे थे, हम लोगों ने भी आपने भी इसको समझने की कोशिश की, आप देखेंगे झारखंड में 2015 से लेके 2023 तक के आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि 24 अभी शुरू हुआ है, 13,500 से कुछ ज्यादा मामले, मुझे एग्जैक्ट चूंकि नंबर मेरे पास कॉपी नहीं होता, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता, लेकिन 13,500 में 13,500 रेप के केस में रजिस्टर्ड हूँ। 6,800 कुछ केसेज जो प्रीवियस गवर्नमेंट से रघुवर दास चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जब जो अभी राज्यपाल है उड़ीसा के, तो 6,893 शायद अगर मैं एक्यूरेट हूं तो, हो सकता है एक आध नंबर इधर उधर हो, इतनी घटनाएं हुई थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे। अब जो 2019 से 2023 तक जो रेप की घटनाएं हुई वो हुई है 1600, 1500, 1400, ये आम एवरेज रहा है पूरे साल की घटनाओं का। और कन्विक्शन जो होता है ऐसे मामलों में, कन्विक्शन का रेट कम रहा, हालांकि आपको जानना चाहिए कि मृत्यु दंड तक फांसी तक की सजा दी गई है झारखंड में, कोर्ट्स ने दिया है रेप के मामले में, इसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं, तो ये तो चिंता का मामला है। और इस पर सोचना सोसाइटी, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट सोसाइटी का है इसमें, पुलिस का पार्ट तब आता है जब आप रेप करते हैं, पुलिस ने अरेस्ट किया कि नहीं, चार्जशीट कैसे की, केस डायरी कैसे लिखी गई, फाइल क्या किया गया, कोर्ट में ट्रायल ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली वो सोसाइटी ही है ना जो जाके रेप करती है या जो रेप के केसेस में आके शामिल। जैसे यहाँ पे दुमका जिले की का एक मामला था, अंकिता नाम की लड़की थी
जी,
जिनको उसने प्रेमी ने जो स्टॉकर था उसने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया। इसको एक इत्तेफाक कहें कि वो उनका जो संप्रदाय था, वो लड़की दूसरे संप्रदाय की थी और वो लड़का दूसरे संप्रदाय का था, भारतीय जनता पार्टी के वहां के जो एमपी हैं गुड्डा के निशिकांत दुबे या दूसरे नेता थे, बड़ा उन लोगों ने इसको इश्यू बनाया, दिल्ली से लोग आए, कंपनसेशन दिया, वो तस्वीरें भी मीडिया में रिलीज हुई और तमाम पत्रकार ये तस्वीरें, ये जो आइडेंटिटी है उस लेडी की, स्पेनिश महिला की, कैसे डिस्क्लोज हुई, किसने किया है ये डिस्क्लोज, हम जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने किया है, वो अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल रही थी कि हमारे साथ ये हुआ है, उसको हमारी मीडिया के लोगों ने वायरल करना उसके एक्स पे, पुलिस ने किया, पुलिस वाज नॉट फर्स्ट, डिप्टी कमिश्नर नहीं थे वो हम लोगों ने किया है, सोसाइटी के लोगों ने किया है, तथाकथित जो सो कॉल्ड बाइकर्स हैं देश के, उन लोगों ने किया, उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि ब्लड करना चाहिए, क्योंकि अब वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो नेपाल में है, लोग पहचान जाएंगे, नेपाल किसी और देश में भी जाएंगे, बट ये हम लोगों ने किया है। तो एज ए सोसाइटी हमें सोचना चाहिए दूसरे को ब्लेम करने के पहले, आखिर शुरुआत किसने की और क्या कैसे कैसे रेप हो जाता है। तो अगर कोई दूसरे दो संप्रदायों का है तो फिर आपके आपके टेस्ट का विषय है, क्योंकि इसमें जो है आपका टेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो आप इस मामले को नहीं उठाएंगे। तो अगर आप ये हो जाएंगे, मतलब इतने सेंसिटिव भी नहीं है, आप स्पेसिफाइड कर लेंगे केसेस को, तो दिक्कत होगी ना सर, BHU में रेप होगा, हम अपनी बेटी, मेरा बेटा IIT दिल्ली में पढ़ता है, तो मैंने इसलिए तो नहीं भेजा पढ़ने के लिए कि उसके साथ कोई मारपीट की घटना हो जाए। जिस फादर ने अपनी बेटी को IIT बेटी में भेजा होगा पढ़ने के लिए, जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली रेप की घटना हुई और रेप में इन्वॉल्व लोग जो BJP के वर्कर्स थे, उनके उनके ऑफिस बेयरर्स थे, तो वहां पे आप बात नहीं करेंगे और ट्राइबल इलाके में कोई घटना होगी बात करेंगे, तो ये भी एक मामला है, सोचना चाहिए।
ठीक है नितिन, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
हाँ, मैं तपस्या की बात से जुड़ना चाह रहा था कि तपस्या जो कहती कि कौन से मुद्दे उठते हैं, किन समुदाय के साथ होता है, किस सेगमेंट के साथ कुछ होता है तो बात उठती है, उसी को जोड़ते हुए मैं सोच रहा था अभी आपसे बात करते हुए दिमाग में आ रहा था कि एक हमारी जो एक सोच हमने हमारे देश में बन जाती है, हम लोगों की जो अपने आप को प्रोग्रेसिव लिबरल बोलते हैं, मैं भी उस कटघरे में आता हूँ एक तरीके से, कि हम लोग विचार कर रहे हैं, बड़ी चिंता कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय में ऐसा कैसे हो गया। मतलब हम लोग उस पॉइंट पे हैं कि हमने आदिवासी समुदाय जिनके पास कुछ नहीं है, आपने उनके कंधों पे सारी मोरालिटी का भार देश का रखा हुआ है। मतलब हम कभी ये बात नहीं करेंगे, अरे ये इस दूसरे समाज में जो अपर कास्ट समाज है इसमें कोई कर दे तो क्या उन्होंने कैसे कर दिया। मतलब हमारे भी दिमाग में है क्या था वो, तो वहाँ तो होता है। तो एक तो मोरालिटी का सारा कारोबार आपने सबसे पिछड़े तबके के ऊपर रखा हुआ है कि वही देश की इज्जत बचा के रखेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, जबकि उसी समाज के अंदर रहते हैं जहाँ वो सबसे उत्पीड़ित हैं और सबसे कम पावर रखते हैं सोसाइटी में। दूसरा, मैं एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि बहुत चीज़ें ये सोसाइटल हैं, डेवलपमेंट से हैं और उससे रिलेटेड हैं, लेकिन एक डेटरेंस और पुलिस डेटरेंस और जुडिशियल डेटरेंस अपना मायने रखता है। कितना जल्दी स्विफ्ट एक्शन हो हर केस में, जैसे तपस्या ने बोले ये केस में हो गया क्योंकि एक तमाशा बनाना था और तमाशा बन रहा था तो उससे बचना था, लेकिन हज़ारों केसेस हैं जो इससे ज़्यादा गंदे होंगे, जिसमें ज़्यादा घिनौनापन हुआ है, ज़्यादा वायलेंस हुई है और ज़्यादा सिस्टमिक है, जहाँ पे शायद आदिवासी महिलाएं इन्वॉल्व हों। मतलब वो पुलिस भी कर चुकी है, आर्मी भी कर चुकी है, उन सब मुद्दों पे हम लोग हिल नहीं पाते हैं, हमारी मिडिल क्लास मानसिकता भी उस पर ज़्यादा झिझोड़ी नहीं जाती। तो हमारी भी एक हिपोक्रेसी है कि क्योंकि इफ़ आई माई यूज़ द वर्ड्स विद एंगर एंड सिनिसिज्म, कि क्योंकि एक वाइट स्किन महिला है बाहर से जो आई हैं तो पूरे देश में ये इशू बन जाता है। यही आई वुड से विदार रेसिज्म, आई वुड वेरी एक्नॉलेज व्हाट इफ इट वाज अ अफ्रीकन वुमन, क्या हम लोग ऐसे ही रिएक्ट करते? तो हम लोग सबको इसका जवाब पता है, आई थिंक। तो हम सबकी हिपोक्रेसी एक तरीके से दिखा रहा है कि एक लास्ट आई वुड से और ये हमने मणिपुर के केस में और जगह भी देखा है कि एक विजुअलाइजेशन ऑफ वायलेंस जो इम्पैक्ट पैदा करती है, कि अब विजुअल निकलता है कि किसी कोई मर गया, कोई कट गया, किसी का रेप हो गया, उसके विजुअल जो निकलता है उससे जो मिडिल क्लास मोरालिटी जिस तरह रिएक्ट करती है वो एक तरीके से असली इश्यूज पे पर्दा फाश के आगे निकल जाती है। तो हम अब ये बात कर लेंगे कि उनके साथ जल्दी जस्टिस हुआ नहीं हुआ, और क्योंकि इनका विजुअल बाहर आ गया और विजुअल हमें एक अलग तरीके से अट्रैक्ट करता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे, लेकिन बाकी सिस्टमिक चीज़ें वो निकल जाती हैं। तो झारखंड की बाकी महिलाओं के साथ क्या होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ उनकी कैसी हैं, वो हम लोग ना आज बात कर पाएंगे ना इसके बाद दोबारा मौका मिलेगा।
ये
विजुअलाइजेशन बहुत मुझे थोड़ा खटकता है कि हमें और अजीब से रास्ते पे ले जा रहा
है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब हम इस तरह से चीज़ों को कैटेगराइज करके देखते हैं तो कुछ चीज़ों को जाने अनजाने में ही वैलिडिटी देते जाते हैं। मसलन कि अगर ये जैसा मेन लैंड में कहीं हुआ तो वो तो होता ही है, या वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें अनकहे रूप से इस्टेब्लिश होती जाती हैं बिना उस पर। तो ये बिल्कुल, ये आई एग्री विद यू कि हमारे अपनी भी हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं इसमें पूरी अपना एक रोल अदा करती है। और दूसरा, उसी इलाके में, उसी ट्राइबल इलाके में एक बड़ा हिस्सा है जो कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री के फोर्सेस के अंडर में है, और वहाँ पर से अक्सर कहानियाँ आती रहती हैं, और उनको हम राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्सेस की सेंक्टिटी, देश की एकता अखंडता, इस तरह के तमाम जुमलों की आड़ में, पर्दे में जस्टिफाई करने की कोशिश करें या उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है, समय समय पर अदालतों के फैसलों ने भी इस चीज़ को स्थापित किया कि कैसे उसी ट्राइबल इलाके में महिलाओं के साथ क्या क्या, ट्राइबल महिलाओं, आदिवासी महिलाओं के साथ किस तरह की के जघन्य घटनाएं हुई हैं। तो ये भी एक उसका पहलू है जिसकी तरफ बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से नितिन आपने हम लोगों का ध्यान खींचा है। तपस्या, आखिरी कॉमेंट्री इस पूरे इशू पर और इन जनरल जो एक रेप कल्चर वाली स्थिति रहती है हमारे सामने, कि एक घटना से दूसरी घटना में हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है, एक महिला के तौर पर आपको क्या समझ में आता है कि क्यों हम किसी बहुत अच्छी दिशा में या एक सुधार की दिशा में नहीं बढ़ पाते? एक महिला के तौर पर आपको किस तरह की इनसेंसिटिविटी या एक इनसिक्योरिटी महसूस होती है? ये शहर है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि देश का ही कैपिटल नहीं, रेप कैपिटल भी है। तो बहुत सारी चीज़ों से आप लोग भी लगातार गुजरती रहती हैं।
आई थिंक मानसिकता जो सोशल मेंटालिटी है, रेप कल्चर है इंडिया में, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इट हैज़ परकुलेटेड इन टू द सोसाइटी. एंड आई थिंक वो तो बिल्कुल ही एक सोशल चेंज होगा जिसमें ऐसी चीज़ों को रोका जाए, जो बचपन से कैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ उनको क्या सेंसिटाइज करते हैं. तो एक जो मैं जो सोच सकती हूँ वो शायद ये होगा कि आप बिल्कुल ही स्कूल और चाइल्डहुड लेवल से आप जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स दें. और वो तो एक सोशल वाला जो चीज़ है, नॉट जस्ट इन चिल्ड्रन और इन मेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज सोशल जो बाहर होता है ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन वो यूजुअली फीमेल्स पे ही होता है. बाहर ना जाएं, ये ना कीजिए,
एंटाइटलमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है उसको.
हाँ, और वो मेन पे को सिखाया नहीं जाता है कि आपको बाहर जाके ये नहीं, ये बदतमीजी नहीं करनी है. एक तो वो करना ज़रूरी है, जेंडर सेंसिटिविटी पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी, टीचर्स में, एवरीबडी. बट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब कोई ऐसा कुछ करता है कि उस इंसान में वो इम्प्यूनिटी कहाँ से आती है, वो इन्हीं चीज़ों से आती है. जैसे कि अगर आप रेप अक्यूज्ड को आप हार पहनाए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स इम्प्यूनिटी. सो जिसका सोशल यूथ में भी असर पड़ता है. तो आई मीन इसमें हर किसी का काम है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कर सकती है या एक सोसाइटी कर सकती है. इट्स
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ आपने इशारा किया, तब से इसी से जोड़ के कि जो हमारे समय की राजनीति होती है वो हमारे पूरे समाज के ऊपर एक बहुत, उसके माइंड स्पेस पर उसका बहुत हद तक कब्जा रहता है. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर पिछले कुछ समय के दौरान की घटनाओं को देखें और उस पर जो हमारी जो राजनीति है उसकी प्रतिक्रिया या उसका रिएक्शन देखें, तो आपको एक एक सूत्र पकड़ने में मदद मिल सकती है. मसलन मणिपुर में जो घटना हुई, जिस तरह से उस पर किस तरह का प्रतिक्रिया सरकार की आई या सत्ता के टॉप से आई, गुजरात में जिस तरह से बिल्किस बानो के मामले में जिस तरह से बलात्कारियों के साथ हुआ, या अंकिता भंडारी के मामले में जो उत्तराखंड की घटना थी, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर जो आरोपी आदमी था जहाँ पर ये सारी घटना हुई थी, उस रिजॉर्ट को डिमोलिश कर दिया गया तो उससे जुड़े सारे सबूत खत्म हो गए, वो एक बीजेपी के नेता. ये जो संरक्षण है, या फिर वेस्ट बंगाल में
जहाँ महिला एक चीफ मिनिस्टर है,
वहाँ पर एक, एक, एक ये जो शेख का मामला आया अचानक से, उसको गिरफ्तार करने में इतने दिन लग जाते हैं, या यहाँ पर देश की आइकन जो है वो महिला खिलाड़ी, वो अपने साथ कहती हैं कि हमारे साथ इतना गलत हो रहा है इतना, और एक बार नहीं लगातार वो दो दो तीन तीन महीने तक सड़कों पर बैठी रहती है, उनको लेकर किस तरह की. तो जो सरकार संदेश देती है, राजनीति जो संदेश देती है, उससे भी बहुत सारे लोगों को, बंगाल का बहुत बढ़िया जिक्र किया आपने कि किस तरह से वहाँ पर एक तरह का एक कल्चर है इस तरह से कि छोटे छोटे लेवल पर लोग इस तरह से लोगों को दबाने का और या उनको हैरेस करने का पूरा एक तंत्र विकसित हो गया, एक सिस्टम बना हुआ है. ये उस राजनीति के लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि चीज़ें कभी नहीं बदलती. रवि, आपकी आखिरी टिप्पणी मुझे मालूम है, इसके बाद आपको हमें विदाई करनी है, छोड़ना है, तो आखिरी टिप्पणी दें और इसके बाद आपका रिकमेंडेशन भी ले लेंगे, फिर आपको हम आज़ाद करेंगे.
देखिए, मेरा मानना है, मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ जो नितिन कह रहे हैं, जो तपस्या कह रही है, कि अकेले का मामला नहीं, ये सिर्फ सोसाइटी या सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सिर्फ उनका मामला नहीं, ये ठीक है. ये जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन का मामला, ये बचपन से अगर आप पढ़ाएंगे ना, समझाएंगे, तब जाकर होगा. जो बंगाल है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, जो महाराष्ट्र है, बंगाल, महाराष्ट्र या इवन ओडिशा जैसे राज्यों में आप एक काम बिना किसी बीच के टॉट के दलाल के नहीं करा सकते. आपको बालू खरीदना है, आपको किसी के पास जाना पड़ेगा. महाराष्ट्र में करना है, कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ेगा. बंगाल में करना है, पहले सीपीएम के लोग थे, अब टीएमसी के लोग वहां पे हैं. तो ऐसे मामले में क्या होता है कि दुर्भाग्यजनक है, लेकिन ये फैक्ट है कि रेप जैसे मामलों में भी वो जो बीच के लोग हैं ना, जो महाराष्ट्र में कॉर्पोरेटर हैं या जो बंगाल में पार्टी के वर्कर हैं, ये वहां मेडिएट करते हैं. शाहजहां शेख के मामले में क्या हुआ है, शाहजहां शेख के अरेस्टिंग में इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि पुलिस कन्विंस ही नहीं हो पा रही थी कि उसको अरेस्ट करना है. और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यजनक जो ये हुई कि जब सीबीआई को मामला चला गया और सीबीआई गई हैंडओवर लेने, तो पुलिस ने नहीं दिया, कहा कि नहीं अभी तो कोर्ट का आदेश नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर बाद में किया गया। मतलब मैसेज क्या गया, मेरा ये नहीं मानना कि वो रेपिस्ट है या नहीं, मैं नहीं जानता क्योंकि ये कोर्ट में जाएगा, लेकिन ये एक टेंडेंसी गई कि आप उसको प्रोटेक्ट
कर रहे हैं ऊपर से।
ब्रजभूषण सिंह जी की बात आपने की, क्या ब्रजभूषण सिंह के मामले में कि वो जो जिन जो हमारी प्राइड है, जिन पे हम जो है जय भारत कह रहे थे, वो जंतर मंतर पे बैठी हुई थी और आप उनको उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां कर रहे थे, तो आप जो है इतनी हिपोक्रेट नहीं हो सकते। इतनी हिपोक्रेसी होगी तो सर भारत में आप हम लोग बात करेंगे सिर्फ, उस रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए रेप तो दुनियावी मामला है, दूसरे देशों में भी रेप होता है। उससे स्पेनिश ब्लॉगर ने खुद ही लिखा कि स्पेन में उनके साथ चोरी की घटना हुई, वहां भी रेप होती है और बहुत सारे मामले में न्याय नहीं मिल पाता। मामला तब उठता है जब आप हिपोक्रेट होते हैं, जब आप हिपोक्रेसी करते हैं, जब आप बायस हो जाते हैं, और दुर्भाग्य से हमारे देश में बायसनेस का मामला।
ठीक है, तो जाने से पहले मैं चाहूंगा रवि आप अपना एक रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं को दर्शकों को देकर जाएं।
देखिए मैं दुमका पे स्पेसिफाई करता हूँ अपनी बात को, जो मैंने इसको रिपोर्ट किया या जो मैंने जाना है या जो मैं पिछले 15-20 साल से झारखंड में रह के देख रहा हूँ ऐसे मामलों को। इस मामले में रेप किसी भी तरीके से हो, किसी के साथ हो, वो खराब है। रेप के मामले को पॉलिटिकलाइज करना खराब है, रेप के मामले में आपका स्पेसिफाई हो जाना खराब है, और अगर आप इन सब चीजों से अलग हो जाएंगे तो आप इसको रोक पाएंगे। अब जो डेटा माइनिंग का मामला होता है, आप डेटा दिखाइए ना। अभी पढ़ रहा था कल के किसी अखबार में, सारे स्टेट्समैन में या कहीं, कि जो निर्भया फंड बना था दिल्ली में निर्भया के साथ रेप हुआ था, उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई है सरकार पूरे तरीके से। 30% शायद इस्तेमाल हुआ है उस राशि का, तो कहां से करेंगे। रांची में कई जगहों पे वो बिजली के पोल के नीचे लगा हुआ अलार्म लगा हुआ है, कुछ घटना हो अलार्म बजाइए, वो काम नहीं करता है क्योंकि पैसे नहीं है उस अलार्म को ठीक करने के लिए। तो आप अलार्म बजा भी देंगे तो कौन आएगा आपको सपोर्ट करने। ये सब कुछ मामले हैं तो हमें सोचना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए रवि। रवि हमसे रांची से जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो अगला विषय है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा मसला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब वो 30 जून से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन को देने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। उसको वक्त चाहिए क्योंकि उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत स्पेसिफिक डाटा की ज़रूरत है देने के लिए, जिसमें वक्त लगेगा। तो हमारा अगला विषय यही है जो इस पर कि मैं नितिन और तपस्या से बातचीत भी करना चाह रहा था, थोड़ा और इससे जुड़ी जो जानकारी आपने भी रिपोर्टर्स कलेक्टिव में एक और ख़बर की है। हमारे दिमाग में बार बार ये बात रहती है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर सब कुछ सर्वर पर कहीं ना कहीं इंटरनेट पर या आपके अपने उसमें कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है डाटा, एक क्लिक पर बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं। इसके बावजूद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि उसको समय लगेगा, और वो जो टाइम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है टाइमिंग। आप अगर देखें 30 जून का वक्त मांगा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, इस बीच में देश में चुनाव होने हैं और वो जनरल इलेक्शन के इस बीच में हो जाएंगे। अगर ये आंकड़े पहले आ जाते हैं, जो कि डेडलाइन है मेरे ख्याल से 12 मार्च डेडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की,
6 मार्च था,
6 मार्च को,
6 मार्च को इन्होंने ये
देना था
जी। तो ये आंकड़े अगर आ जाते तो शायद उसमें ऐसी कुछ चीज़ें मिलें जो कि चुनावी मुद्दा बन जाएं, विपक्ष के हाथ में एक हथियार बन जाएं। ये सब शायद है क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो इन तमाम संभावनाओं आशंकाओं को देखते हुए ये जो हमारे सामने SBI का नया बयान आया है, इसको हम कैसे देख पाएं और इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। तपस्या,
SBI एक तो कि पहला ये कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक अनबिलीवेबल एक एक्सक्यूज दिया है SBI ने। और कोई इतना बड़ा जजमेंट जो आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन के बाद इसका जो आप इसका खुलासा करेंगे तो इट टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम द जजमेंट, क्योंकि एक जजमेंट का मकसद यही है कि ये फुल डिस्क्लोजर हो, सिटीजन्स को देयर राइट टू इन्फॉर्मेशन और उनको जानने इसके बारे में जानकारी मिले ताकि वो फिर उस हिसाब से अपना इलेक्टोरल डिसीजन ले।
बिल्कुल।
तो ये SBI का एक तो एक एक्सक्यूज लग रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बोल रहा है जो रोज़ करोड़ों ट्रांजैक्शंस करता है, जिसके पास बहुत ही वेल डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, वो बोल रहा है कि हमें 4 महीने लग जाएगा। 22,000 बॉन्ड्स के करीब बॉन्ड्स की बात है ये। और मैं सोच रही थी कि इससे ज़्यादा डेटा तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव एक स्टोरी के लिए देख लेता है, दो लोग देख लेते हैं एक, वो भी बहुत कम टाइम में। तो दिस आई थिंक सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक अच्छा फैसला लेना चाहिए। इट इज़ अबाउट द डिग्निटी ऑफ इंडिया जुडिशरी एज वेल राइट नाउ।
नितिन, ये जो स्थिति है आंकड़ों की, मैं कुछ लोगों के बयान, एक तो ये कि उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वर्कर्स यूनियन है उन्होंने विरोध किया है, जताया है कि ये गलत हो रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए
ऑफिसर्स यूनियन ने।
ऑफिसर्स यूनियन ने, आईटी एक्सपर्ट्स जो हैं उनका कहना है कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और ये जो डाटा होता है ये फिंगर टिप्स पे होता है, एक क्लिक के ऊपर वो सामने आ जाता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेट करना है, ये तो बिके ही ऑनलाइन है, इस तरह से खुलते हैं इसे, इसके बावजूद इस तरह की बात हो रही है। तो आपका पहला इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या दिमाग में आता है नितिन?
तीन बात, एक तो तपस्या ने एकदम सही मेटाफर पकड़ा, मतलब मैं जानता हूँ तपस्या एक महीने में 150 कंपनियों के रिकॉर्ड खोल के उनको कनेक्ट कर पाती अकेले, जबकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेन नहीं थी, तो ये कर सकती हैं। शुरू में मान के चलते हैं स्टेट बैंक झूठ नहीं बोलता है, ऐसा मान के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो एकदम नहीं बोलता। अगर ऐसा माने तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमने दो डब्बों में अलग अलग जगहों में दो टाइप की इन्फॉर्मेशन रखी हुई जो सही में डब्बों में है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में, उनका कहना है कि डब्बों में रखते हैं हम, तो एक डब्बे में रखते हैं कि किसने बॉन्ड खरीदे और दूसरे डब्बे में होता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने बॉन्ड एनकैश किया और अपनी जेब में नकद निकाला। स्टेट बैंक इंडिया के पास करीबन 40,000 मुलाजिम हैं और सब हम दोनों में से कम ज़्यादा अकाउंट्स जानते हैं, क्योंकि उनका काम ही अकाउंट्स मैनेज करना है। तो 40,000 में से 100 लगा दें और बोलें कि सारे डब्बे खोल देते हैं, भाई आजकल एयरपोर्ट चलते हैं, एयरपोर्ट से तो अब तो ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए हैं, तो सारे डब्बे पूरे देश से जमा कर लेते हैं। मान लीजिए अभी मैं इसी पर चल रहा हूँ कि स्टेट बैंक झूठ नहीं बोलता है, हाँ डब्बे में है सर, तो डब्बे खोलने के लिए भी आपके पास 40,000 मुलाजिम है। डब्बे खोलने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड, मान लीजिए जैसा वो बोल रहे हैं कि सब एक कागज़ पे हैं, बेचारा कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया हमने तो कभी।
ये वो बैंक है ये जो बहुत नियम से सेकंड सैटरडे और लास्ट सैटरडे की छुट्टियां ले लेता है, सब कुछ बहुत नियम कानून से होता है, दोपहर में 2 बजे इसके सारे एम्प्लॉई 1 बजे लंच पे चले जाते हैं, फिर 1 घंटे बाद आते हैं,
नहीं उनसे उम्मीद है। अतुल, ये भी सोचो ये वो बैंक है जहाँ पे करीबन 1,500 करोड़ रुपए की रिकंसिलेशन हर शाम को 4 बजे होती है, मुलाजिम ब्रांच छोड़ के जा नहीं सकता जब तक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में 1-1 रुपए का हिसाब ना हो
जी,
ये वो बैंक है। लेकिन मान लेते हैं, मानना चाहिए स्टेट बैंक झूठ नहीं बोलता, हाँ तो झूठ नहीं बोलता तो डब्बे हैं,
हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये मान के चल रहे हैं हम कि ये सब कुछ डब्बे में है,
हाँ सब डब्बे में है,
झूठ नहीं बोला जा रहा
है, स्टेट बैंक डब्बे से चलता है
तो एनीवे,
लेकिन इनके पास 40,000 मुलाजिम है जो डब्बे खोल सकते हैं, सारे हमसे ज्यादा मैथ्स अकाउंट्स पड़े हुए हैं क्योंकि भाई अब बैंक में है। तो अगर एक बॉन्ड खोला, मान लीजिए एक पर्ची है, बॉन्ड को एक पर्ची मान लीजिए, जैसे चेक होता है, चेक पे एक नंबर होता है, अगर 22,000 जैसे तपस्या मतलब 22,000 ऐसी पर्चियां हैं जिसपे लिखा हुआ है ये नंबर का बॉन्ड इन्होंने खरीदा था, क्योंकि जिसने खरीदा वो स्टेट बैंक खुद ही बोलता है कि भाई जब तक चेक नहीं हुआ कि ये कौन आदमी है, उसका KYC बोलते हैं अंग्रेजी में, नो योर कस्टमर, जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ हम तो किसी को लेने नहीं देते थे,
देते नहीं।
और जब तक पॉलिटिकल पार्टी से 28 पॉलिटिकल पार्टी लेती थी तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है जो ले पाती थी, तो इन लोगों को चेक एक सीरियल नंबर से कनेक्ट करके दूसरे से देखना है। तो मुझे लगता है 40,000 में से 100 भी लगा दे तो, या अगर ज़रूरत हो तो हम रिपोर्टर्स कलेक्टिव से तपस्या को भेज सकते हैं 2-4 दिन में और जल्दी हो जाएगा शायद,
2-4 दिन और जल्दी,
तो 10 दिन में मान लीजिए अगर डब्बे में, लेकिन अगर डब्बे से बैंक चल रहा होता, अगर ये 2-3 के डब्बों में सामान रख के कि इनकमिंग आउटगोइंग कॉल टाइप 2 डब्बे होते स्टेट बैंक के,
तो ये तब की स्थिति है, वो इस सिनेरियो
में 80 में भी ऐसा नहीं था। हाँ, आज की स्थिति देखते हैं। तो तपस्या और हम लोग जब स्टोरी कर रहे थे तो एक विसल ब्लोअर से हम बात कर रहे थे बैंक के अंदर, जिन्होंने बैंक के सॉफ्टवेयर बनाए हैं और चलाते हैं, खास करके जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर यूज करता है बैंक्स करके इंडिया के अंदर,
इंफोसिस हैंडल करता है,
इंफोसिस का सॉफ्टवेयर है कॉन्ट्रैक्ट पे है, और दूसरा उनका सॉफ्टवेयर है फिनिकल जो इंटरनेशनल ब्रांचेस के लिए यूज किया जाता है। दोनों वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर माने जाते हैं बैंकिंग इसमें, मतलब अभी तक ये दोनों सिस्टम्स कभी हैक नहीं हुए, सो इट्स इनक्रेडिबल। अगर आप उनके सिस्टम्स जाने, हम दोनों समझ रहे थे विसल ब्लोअर से, और उसके बाद मैनुअल्स पढ़ रहे थे उसके, जो मैनुअल्स SBI ने चुपचाप बाद में हटा दिए और वो फिर तपस्या ने निकाल के वापस पब्लिक डोमेन में डाले, कि आप एक रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में नहीं डाल सकते जब तक व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रजिस्टर ना हो। वो एक रुपया उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव नहीं हो सकता जब तक 18-20 एंट्रियां बैंक के सिस्टम में ना हो, चाहे वो मेन सिस्टम में हो चाहे इन्होंने स्पेशल सिस्टम बनाया हो
जी।
लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका अकाउंट है
जी।
मैं वैसे तो आप न्यूज लॉन्ड्री में है तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद नहीं पाएंगे, बट अगर मान लीजिए खरीद रहे होते,
काश
हम लोग ऐसे अखबारों में होते जहाँ न्यूज इलेक्ट्रोल बॉन्ड अफोर्ड कर सकते, तो मान लीजिए आप खरीदते हो, आप अपने स्टेट बैंक की ब्रांच में गए, आपने बोला भाई मुझे एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना, सबसे पहले ब्रांच वाला क्या बोलेगा, एक चेक दे दीजिए। चेक कहाँ से होगा, आपके अकाउंट से होगा, अकाउंट से होगा तो एक पर्ची बनेगी, आप पेइंग स्लिप जैसे होता है देंगे कि भाई इतने रुपए का बॉन्ड इस नाम पे बैंक के नाम पे मुझे चाहिए, तो बैंक आपको एक पर्ची बना के देगा। ये बेयरर चेक की जैसा है, मतलब आप उस पर कंपनी का नाम नहीं लग रहा कि किस कंपनी को देने वाला हूँ, मैं नितिन या तपस्या को पैसा देने वाला हूँ, लेकिन उसमें आपने नंबर लिखा है। स्टेट बैंक वो चेक लेके जाएगा, दे देगा किसी और को, दूसरी पार्टी लेगी, बोलेगी ये चेक मेरे को मिल गया, मैं जमा कर रहा हूँ अपने ब्रांच में अपने अकाउंट में, और फिर एंट्रियाँ चढ़ेंगी दूसरी तरफ, क्योंकि आप सोचिए अगर आप कैशियर है उस ब्रांच में जहाँ पे BJP या कांग्रेस वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया, तो कैशियर क्या बोलेगा, डब्बे में डाल दीजिए। कैशियर यही तो बोलेगा कि अकाउंट्स में चढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो अकाउंट्स में चढ़ाना जो होता है वो सिंपल होता है, अकाउंट्स में चढ़ाना मतलब एंट्रियाँ बने जा रही हैं, हर लेवल पर एंट्रियाँ बन रही है, और ये कोई इसकी गांव की पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का अकाउंट नहीं है कि बेचारा खो जाए, वो होता है गांव के पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बेचारों की बहुतों की खो जाती हैं। ये देश की सबसे बड़ी 26 पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स हैं। आप सोच सकते हैं कि बैंक की हिमाकत होगी कि इसका हिसाब डब्बे में रखा जाए, और इसमें से 70% पैसा BJP को गया है, तो आप सोच सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हर रोज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातें करता रहता था, जिसका रिकॉर्ड तपस्या और हमने निकाले कि वो किस तरह रिपोर्टिंग करते थे स्टेट बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री को हर रोज अमूमन, वो बोल रहा है कि जिस एक स्कीम है जिसके 70% पैसे सिर्फ BJP को जाते हैं, और इसका हिसाब हम एक डब्बे में रखेंगे जो डब्बा खुलते ही नहीं है। अब उसका दूसरी तरफ से चलते, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि स्टेट बैंक डब्बा बैंक है, पर नहीं, हमें भी पता है गजब का बैंक है। तो हमने ये पाया कि हम पुराने रिकॉर्ड्स पे गए, और तपस्या इसके बारे में थोड़ा और बताएगी कि ये सब खुलासा होने से पहले जब हम और आप न्यूज लॉन्ड्री रिपोर्टर्स कलेक्टिव मिलके सब रिपोर्ट्स कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट सो रहा था उन सालों में बावजूद के केस पड़े हुए थे उनके सामने, तो तब स्टेट बैंक क्या करता था इन रिकॉर्ड्स के साथ, क्या स्टेट बैंक में सही में जैसे उन्होंने बोला कि अलग अलग डब्बों में अलग अलग शहर के देश के कोनों में खबर पड़ी रहती थी, उनको पता ही नहीं चलता था। तो हमने पाया कि जब भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिकते थे और इन कैश होते थे, घंटों से दिनों के अंदर स्टेट बैंक का कॉरपोरेट ऑफिस मुंबई में है, उसमें एक खास यूनिट है TBU, क्या
ट्रांजैक्शन बैंकिंग,
हाँ ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट, एक खास सेट ऑफ ऑफिसर्स हैं जो स्पेशल केसेस ही हैंडल करते, छोटे मोटे अकाउंट्स नहीं हैंडल करते, वो लोग सारे देश से रिकॉर्ड्स फटाफट मंगवा लेते डाउन टू द पॉइंट की तपस्या
की कितना हर किस किस ब्रांच से कितने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, कितने एनकैश हुए हैं, उनका डिनोमिनेशन क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, वो सारा फिजिकल है या डिजिटल है,
ये TBU के पास सारा रहता
ये है। हाँ, और ये विद इन 48 आवर्स ये गवर्नमेंट को वो इन्फॉर्मेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज देते थे,
फाइनेंस मिनिस्ट्री मांगती थी
भैया मंत्रालय के पास, मतलब ये सारे रिकॉर्ड पहुंच भी रहे हैं 24 घंटे के अंदर,
कि वो पूछती थी भाई कितने बिके कहाँ बिके, और फिर बीच बीच में बोलती थी यार सिलचर साइड कम बिक रहे हैं वहाँ कुछ करवाओ, उस एरिया में डिमांड आ रही है वहाँ खुलवा दीजिए एक ब्रांच जहाँ पे खरीदे जाएं बेचे जाएं, और स्टेट बैंक वो सब करती थी, बताती थी कि सर इस ब्रांच में बिक नहीं रहा है, इस ब्रांच में इतने बिक गए, इसमें करोड़ों के बिक रहे हैं, इसमें हज़ार वाले बिक रहे हैं, कितने छपवा दें, वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछती थी, और कतार लगातार चलता रहे, मतलब हमने 2018 से लेकर 20 तक के रिकॉर्ड तो हमारे पास हैं कि जब भी बिके हैं स्टेट बैंक ने टोटल स्पीड के साथ जवाबदारी दी है सरकार को, कोर्ट को, हाँ कोर्ट को बड़ा उनको मुश्किल लग रहा है ये सब करने के लिए। एक जो हमने पाया जो कि कमाल का ही हिस्सा था, मतलब ये भी आप इसको भी सोच के आपकी आंखें खुलेंगी, पर जो दूसरा वाला पार्ट जहाँ वो एक्सपायरी वाले बॉन्ड्स वो बताओ ना।
हाँ सो 2018 में ही इन्होंने एक इलीगल विंडो खोला था कर्नाटका इलेक्शन से पहले मई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 10 दिन का जिसमें बिक सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब उसमें ऐसा हुआ कि एनकैशमेंट का 15 दिन का जो पीरियड होता है उसके बाद मतलब एक्सपायर्ड बॉन्ड्स लेके कुछ पार्टीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ न्यू दिल्ली ब्रांच में गई एसबीआई के कि हमको ये एनकैश करना है। तो ये 20 करोड़ के करीब के बॉन्ड्स थे और इस पे फटाफट अगेन टीबीयू ने वित्त मंत्रालय को लिखा परमिशन पूछने के लिए कि इनका एक्सपायर्ड है, 15 दिन हो चुके हैं, आप बताइए हम क्या करें। और फटाफट ही जल्दी से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि इनको तो उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया, 15 दिन को 15 वर्किंग डे बना दिया, बोल दिया तो एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया और वो इलीगल एक्सपायर्ड बॉन्ड्स उनको एनकैश
हो गए।
एंड कौन सी पार्टी को के थे वो बॉन्ड्स ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया लेकिन ऐसा हुआ है। और ये पूरा जो प्रोसीजर था ये विद इन 24 आवर्स हुआ कि न्यू दिल्ली ब्रांच ने मुंबई को बताया, मुंबई ने ट्रांजैक्शन बैंकिंग यूनिट को बताया, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वापस लिखा, तो ये पूरा का पूरा जो है ये 24 आवर्स में हुआ। तो इनका स्पीड जो है वो भी बदलता रहता है,
मतलब जब करने पर आते हैं तो मतलब हवाई जहाज की स्पीड से सब कुछ हो जाता है।
हाँ तो ये जो स्टेट बैंक का एक मतलब सरकारी बैंक्स की कोई रेपुटेशन होती है कि भाई खाने के वक्त काम नहीं होता, वो सामने आम आदमी के लिए होता है, वो हम लोग के साथ सबके साथ होगा, लेकिन
सर्वर डाउन हो जाता है,
सर्वर डाउन हो जाते हैं। लेकिन एक यही जैसे तपस्या ने जो एग्जाम्पल दिखाया और पकड़ा था इन्होंने कागजों में, 24 घंटे के अंदर 24 से ज़्यादा अफसर 3 जगहों पर 3 महकमों में बैठे हुए जोड़ के 1-1 करोड़ का हिसाब कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है, एक इस तारीख का है, एक उस तारीख का है, ये 1 करोड़ का है, ये यहाँ पे रह गया, ये सब ग्रैनुलर डिटेल पकड़ पा रहे हैं और ये एक ब्रांच की बात है और फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं साहब लोगों से कि क्या करें। कहने को ये स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये अलग कंपनी है, पब्लिक सेक्टर
जी
है
जी।
आपके भी मेरे शेयर हो सकते हैं इसमें, तो इसलिए स्टेट बैंक गई है सुप्रीम कोर्ट बोलते कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है। तपस्या, हमारी रिपोर्ट 2 चीज़ दिखाती है, एक ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सरकारी हैं और सरकार से ऑर्डर्स लेके काम करते आए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, खास करके किस किस्म की इंक होगी, कैसा छपेगा, उस पर कमीशन क्या होगी, कितने जीएसएम का पेपर लगेगा इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये भी वित्त मंत्रालय से परमिशन लेते थे, तो आज़ाद नहीं है। दूसरा इनकी काबिलियत है कि यही काम वो मतलब एक वित्त मंत्रालय के सचिव थे एससी गर्ग साहब, आज वो पलट गए पर परसों तक उनकी आवाज अलग थी थोड़ी आज पलट नहीं कल शाम को पलटे हैं, परसों तक वो अलग विचार के थे। तो वो सचिव थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स करवाए जबकि बहुत सारी संस्थाएं और ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ थी, इलेक्शन कमीशन जब खिलाफ था, जब आरबीआई खिलाफ था, तो गर्ग साहब ऐसे थे जो सरकार के बिहाफ पे धक्का लगा लगा के इसको निकलवाया और वो मानते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, उनके विचार वैसे हैं। वो परसों तक खुद बोलते थे कि यार 10 मिनट भी नहीं लगते, बटन दबाने की बात है, कल बदल गए। हाँ, गर्ग साहब खुद बोल रहे हैं।
और आप क्या कह रहे हैं?
अब बोल रहे हैं कि नहीं होता
तो लगता
है। हाँ, आधे रास्ते जा सकते हैं, पूरे रास्ते नहीं जा सकते, हो ही नहीं सकता।
जगजीत सिंह की बड़ी खूबसूरत सी गजल है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
ये तो अपने खत काफी लिख चुके हैं इनके प्यार के खत तो बहुत एक किताब में भी बन गए हैं पूरी किताब बनी है, पर ठीक है, गर्ग साहब पे कुछ अलग किस्म के सोच होगी उनकी। लेकिन मैं इस बैंकिंग सिस्टम पे कैसा विश्वास करूं जो करोड़ों ट्रांजैक्शन रोज करता है, जो देश के ज्यादातर लोगों की सेविंग अकाउंट यहाँ पे रहे हैं, जो हम लोगों के सबके पैसे स्टेट बैंक में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो हजारों करोड़ के लोन्स देता है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यहाँ पे होती है HDFC के बाद शायद, मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ या कोई भी कोर्ट कैसे विश्वास कर सकता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डब्बों से चलता है।
बिल्कुल।
दूसरा एक अगर लास्ट चीज अगर आपके समय हो, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है एक कदम पीछे भी हटना चाहिए, कोर्ट को भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए। कई बार कोर्ट से ऊपर हमारी नज़र बड़ी जल्दी हट जाती है क्योंकि कोर्ट से उम्मीदें इतनी कम हो गई हैं कि जज साहब अगर थोड़ा सा भी ढंग का ऑर्डर दे दे तो हमें लगता है चलिए गरिमत है बस आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सीजीआई के कोर्ट पे जाएं जिन्होंने ये ऑर्डर्स दिए, बहुत अच्छा ऑर्डर दिया कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब हमने आपने और हमने रिपोर्टर्स कलेक्टिव न्यूज़ लॉन्ड्री ने 6 साल पहले प्रूव किया था, उनको थोड़ा सो गए थे पर जगे, हम इसी में खुश हो गए कि कभी तो जगे, लेकिन ऑर्डर में था कि ये गलत है और जिन्होंने पहले ये खरीदे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो सब डिस्क्लोज हो कि किसने खरीदा और किसको दिया। और उसमें कहते हुए इसलिए बोला गया, कोर्ट ने बोला इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नागरिक को पता होना चाहिए किस कॉरपोरेट ने किस पार्टी को पैसा दिया, अकाउंटेबिलिटी बनती है। कोर्ट भी बड़ा आराम से रुक गया एक कदम आगे जाने से कि पहले जो ये हुआ वो तो आप साफ करिए कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रास्ते किसने किया, लेकिन ये नहीं बोला कि आगे से भी नहीं होगा, कि आगे से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अकाउंट्स में लिख के देंगी, डिटेल्स देंगी, कैश नहीं लेंगी, इलेक्शन कमीशन ऑडिट कराएगा। अभी इलेक्शन कमीशन की पावर नहीं होती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑडिट करा सके। तो ये ऐसा होता है कि मैंने जो लिखा कि मैंने इतना कमाया ऐसे कमाया, इनकम टैक्स मुझसे पूछता नहीं है, मैं बता देता हूँ बस इतना ही मिला, इसी से मिला, आप हिसाब रखिए, बाय बाय टाटा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिंदुस्तान में अलाउड है कि अपना हिसाब खुद डालें और निकलते बने, कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि सही है गलत है। इलेक्शन कमीशन सालों से बोलते आ रहे कि भाई ऑडिट तो कराने दो, तीसरी थर्ड पार्टी तो चेक करे कि सही में ये पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से पैसा ला रही है। तो ये कोर्ट के पास ये चांस था कि जब आपने बोल दिया कि कॉरपोरेट्स का जो भी इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टीज पे वो डिस्क्लोज होना चाहिए,
पता लगना चाहिए,
तो एक कदम आप रेट्रोस्पेक्टिवली तो चले गए बट फ्यूचरिस्टिकली ये कोर्ट रुक गया कि आगे से नहीं देखने की जरूरत। तो मुझे लगता है कोर्ट ने भी थोड़ा आधा कदम खेल के थोड़ी तो बदमाशी करी यहाँ पे। अब कंटेम्प्ट के केस में भी देखते हैं कि कितना करता है
ये SBI डायरेक्टर के खिलाफ,
मतलब मैं तो कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इतना वैसे तो कई चीज़ों पे बड़ा एकदम कूद पड़ता है, तो यहाँ तो सुओ मोटो उठाना चाहिए था कि भाई डेडलाइन थी, डेडलाइन पार हो गई, ऐसा क्यों है कि पिटिशनर ADR और प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स को जाना पड़ रहा है। मतलब ये तो डेडलाइन खत्म हुई तो सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए कि चेयरमैन को बुलाइए कि क्या डब्बों पे चल रहे हैं आप,
क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इस इतनी सारी जानकारी से आपको पता चल गया होगा कि जो सुप्रीम जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है और असली स्थिति क्या है, क्या वास्तव में इतनी स्थितियाँ हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं कि इनको 3 महीने 4 महीने का वक्त लगता है इस और इस रिपोर्ट के बाद या इस जानकारी के बाद। और अंदाज़ा लग गया होगा कि जो गर्ग साहब कह रहे थे 10 मिनट लगता है, उनको लगता है खैर बदल गए वो। तो ये एक स्थिति है हमारे सामने और इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी पारदर्शिता, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये तमाम चीज़ें, लोगों के जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, तमाम चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं और सरकार उसमें हीला हवाली करती रही। और एक पैटर्न है इसमें, अगर आप ED के जो डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला था अगर आप देखें, जब कोर्ट ने कहा कि नहीं आप यूनिलैटरली बार बार अपॉइंट कर रहे हैं ये वो, तो भी सरकार ने इसी तरह का एक वो काम किया था, उन्होंने कहा था कि हमें 6 महीने और दे दीजिए फिर हम सोचेंगे, या इनको और एक एक्सटेंशन दे दिया जाए, 3-4 एक्सटेंशन के बाद एक एक्सटेंशन की और ज़रूरत थी उनको। तो ये एक तरह का पैटर्न है, अब हर चीज़ को कोर्ट में या तो लटका दिया जाए या वो किसी तरह से उसके फैसलों को वो कर दिया जाए। तो ये जो अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें कंटेम्प्ट का एक वो हो सकता है इशू, इसकी अभी कोई इसमें किसी तरह का अपडेट है?
तो अभी जो लास्ट है कि प्रशांत भूषण जो वकील हैं सीनियर, उन्होंने ADR जो ओरिजिनल पिटिशनर उनके बिहाफ पे कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी, जिसकी सोमवार को उसकी भी हियरिंग होगी। और स्टेट बैंक ने जो प्ली डाली है कि हमें थोड़ा जून के एंड तक, एक बेसिकली इलेक्शन के बाद तक का टाइम दिया जाए, दोनों एक ही दिन सोमवार को इस पर हियरिंग होगी। अब उसके आगे तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी इज्जत वो बचाना चाहता है कि नहीं।
ठीक बात। इसके साथ ही हम कुछ हमारे पास लेटर आए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं और रिकमेंडेशन की बात भी करेंगे। एक एनोनिमस लेटर है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, हमारे सब्सक्राइबर हैं। हाय, आई यूज टू वॉच NL टिप्पणी एंड न्यूसेंस रेगुलरली, दे वर फनी एट फर्स्ट बट देन इट बिकेम डिप्रेसिंग सीइंग व्हाट द स्टेट ऑफ मीडिया एंड नेशन करेंटली इज। आई हैव स्टॉप्ड वॉचिंग देम सिंस It started making me depressed. However, I still watch the interviews conducted by NL and a Hafta Charcha podcast. Thank you, anonymous. I understand that you guys are journalists, so it is your job, but now does one not get depressed after following an unbiased media platform which shown things as they are? Anyway, good job, guys. It is just becoming hard to follow news and not get mad depressed. Thank you. देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए. अच्छी अच्छी बातें करने के लिए सरकार के पास तो खैर बहुत सारे वो हैं, और उसके अलावा अच्छी बातें करने के लिए सरकार के अलग जो जिनसे आप उम्मीद करते थे कि जो सवाल कर पाएंगे, पूछ पाएंगे, वो भी सरकार की अच्छी अच्छी बातें ही दिखा रहे हैं. तमाम प्राइवेट मीडिया संस्थान हैं, तमाम बड़े अखबार हैं, तो उन अच्छी अच्छी बातों से अलग कुछ चीज़ें करने का ये वक्त है. मुझे लगता है कि हम वो काम कर रहे हैं, रिपोर्टर्स कलेक्टिव है या न्यूज़ लॉन्ड्री है या और भी तमाम बहुत सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं. डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सही चीज़ों को पकड़े रहने की ज़रूरत है. नितिन,
मैं तो कहूँगा कि मतलब हम थोड़े बोरिंग और डिप्रेशन टाइप वाले हैं,
सिनिकल भी होते हैं ना.
हाँ, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री तो हमें अपने हालात पे हंसने का मौका देता है. मतलब उससे कैसे मुश्किल हो सकती है मुझे पता नहीं. मतलब हम लोग कई बार आपस में बात करते हैं कि यार हमारा काम पढ़ के तो लगता है कि हाँ ज्यादा संजीदा हो गए, पर न्यूज़ लॉन्ड्री तो हम इसलिए पढ़ते हैं कि अपने हालात
थोड़ा हंस सके. हाँ,
और खाना वाना बनाते रहें, खाते रहें, गाने सुनते रहें साथ साथ. मतलब हम लोग इतने बुरे हाल में हैं, कुछ हमसे बहुत बुरे हालों में हैं, लेकिन खाना बनता रहता है, हंसते रहते हैं लोग और गाना गाते रहते हैं.
हाँ.
तो वो साथ में करते रहे और हम लोगों को पढ़ते भी रहे, होपफुली
यही तरीका है. अमर का एक छोटा सा लेटर है. दिस इज रिगार्डिंग द स्मॉल कमेंट मेड ड्यूरिंग द चर्चा 308 टेकिंग अबाउट कट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. द पैनल सेड दैट CUET इज गुड to tackle this problem. My experience is that outside Delhi, it has done more harm than good. All the centrally funded institutions have been arm twisted into accepting it without any thought given to the charter or mandate of the institution. Central institutions in different states are suffering because CUET result comes very late, and by that most of the students secure admission in state universities. The situation is worse in the institution which operate in regional languages. The centralization of everything in this regime is destroying everything. To ye kisne kaha tha aur ye kiska comment hai, thoda sa isko mujhe dekhna padega, aur I would like ki wo khud isko thoda samjhaye kya context tha. Maine is hisse ko suna nahi hai, dekha nahi tha, par ek cheez jo aapki aakhri line hai ki the centralization of everything in this regime destroyed everything, isse ek had tak main bhi ittefaq rakhta hu, sehmat hu ki ye jo power of one ki baat hamesha kahi jati hai na, ek bhasha, ek culture, ek sanskriti, ek khana, ek kapda, एक तरह से सोचने विचारने, ये निसंदेह ये बहुत ही बुरी चीज़ है. किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों को न तो समर्थन किया जाना चाहिए, ना इस तरह की चीज़ों को इवन लागू होने देने की तो बात बहुत दूर है. नितिन,
तो मेरा मतलब अब तो मैं एजुकेशन से, वैसे भी कॉलेज वॉलेज नहीं गया ज़िंदगी में, पर अब तो कॉलेज और एजुकेशन से बहुत ही दूर पहुंच गए हैं. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा जो आपके रीडर हैं उनसे और ऑडियंस है उनसे इत्तेफाक रखता है कि मैंने भी जो सुना है, मैं मणिपुर, अरुणाचल और तमिलनाडु में भी अभी रिसेंटली सुन के आ रहा था कि रीजनल यूनिवर्सिटीज़ और जो बच्चे दिल्ली और मेट्रोपॉलिटन से दूर हैं उस पर CUET का असर बहुत अलग पड़ा है.
अच्छा.
क्योंकि रीजनल कैपेसिटीज़ अलग थी, लॉजिक अलग था, और सेंट्रलाइजेशन से एक एफिशिएंसी आती है सिस्टम में. मतलब ये हमेशा होता है, सेंट्रलाइजेशन ब्रिंग्स अ सर्टेन एफिशिएंसी टू अ पॉइंट, और उसके बाद स्टार्ट्स टू डिस्ट्रॉय एंड करोड जो चीज़ आप सेंट्रलाइज कर रहे हो. तो ये मैंने प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स तीनों से, जस्ट इत्तेफाक की बात है, कुछ नेफ्यूज नीसेज कॉलेज में जा रहे हैं तो बात कर रहे थे इस बारे में, और सब पा रहे थे कि ये CUET नुकसान कर रहा है, और शुरुआत नुकसान की है. और हो सकता है कि कई प्रोफेसर्स ने रीजन में बोला कि आने वाले वक्त में इसका असर और भी रीजन्स पे बहुत होगा. जैसे मणिपुर में एक रीजनल बोर्ड है, एक लैंग्वेज सिस्टम अलग है, तो वहाँ के बच्चों को अब एक अलग सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ रहा है. अगर CBSE में नहीं हो आप तो अलग पूरा,
बिल्कुल,
तो आपकी मानसिकता पूरी बदलना. हो सकता है सेंट्रलाइजेशन का एक हो कि कुछ एरियाज़ में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेटर हो जाए जहाँ रीजनल बोर्ड्स अच्छे नहीं थे, लेकिन उसमें बहुत लॉस भी हो रहा है. तो ये मैंने सुना, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, तो आई स्टॉप एट दैट.
ठीक बात. तो बस यार,
ये इशू तो मैंने भी कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया है तो मैं जानती नहीं हूँ, बट वो होमोजेनाइजेशन और हर किसी चीज़ को एक ही मोल्ड में डालना वो मोस्टली हार्म करता है जो भी जो जैसे न्यू दिल्ली का जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं और जो छोटे टाउन या कहीं से आते हैं बहुत डिफरेंसेस हैं एंड आई थिंक एक गुड एजुकेशन सिस्टम इज वन दैट कैन कल्टिवेट दोज डिफरेंसेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग एवरीथिंग इन वन.
मेरा अपना नेफ्यू अभी 2 हफ्ते पहले मणिपुर से वो दिल्ली आया, कोचिंग करनी पड़ेगी CUET के लिए क्योंकि वहाँ पे मणिपुर में नहीं हो पा रहा था. अब वो फंसे हुए हो क्योंकि CUET एक ही टाइम पे होता है, मणिपुर के सर्कमस्टांसेस अलग हैं. तो मणिपुर में तो मैनेज हो जाता कि चलिए 2 महीने सब कुछ रुका हुआ है, फिर ज़िंदगी जब शुरू होगी एग्ज़ाम होंगे एंट्रेंस होगा. लेकिन अब वो फंसा हुआ है तो उसको थैंकफुली उसके पास हम लोग थे कि दिल्ली आके रह रहा है. वरना सोचिए किसी बच्चे के लिए खर्चा करना कि वहाँ से आके दिल्ली में बैठा है
जिसका कनेक्शन नहीं है, जिसके कोई संपर्क नहीं है.
ये तो 10 ही मतलब 50 लाख में से 10 ही होंगे जिनके दिल्ली कनेक्शन होंगे.
बिल्कुल,
तो बाकियों की जिंदगी थोड़ा तो ये परेशान कर.
हम कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर एक पूरा पॉडकास्ट करने की, ये जो कैसे ये रीजनल यूनिवर्सिटीज को इंस्टीट्यूशंस को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी जो समस्याएं हैं देश के दूरदराज के हिस्सों में छात्रों को क्या कैसे उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक पॉडकास्ट करेंगे. थैंक यू अमर इस चीज़ को हमारे जानकारी में लाने के लिए. और रिकमेंडेशन पूरा कर लेते हैं चर्चा ख़त्म करने से पहले. सबसे पहले आप नितिन क्या रिकमेंड करेंगे?
या मैं किताबों के नाम भूल जाता हूँ बट आई थिंक गूगल करेंगे लोग तो मिल जाएगा. एक तो एक जापनीज ऑथर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है उनकी किताब है मेन विदाउट वुमेन.
ओह आई एम रीडिंग दैट राइट नाउ.
हाँ हाँ तो मेन विदाउट वुमेन,
मेन विदाउट वुमेन,
मुराकामी.
मुराकामी हाँ. एक तो वो मैं ख्याल से मतलब मैं पढ़ा था रास्ते में ट्रेन पे और फ्लाइट में पढ़ रहे थे तो हिला. अच्छा. उससे मुझे दूसरी किताब जो याद आई शारण्या उन सर ने उनका भूल रहा हूँ उनकी किताब शाहरुख. लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया की सोसाइटी में हाउ अ सर्टेन काइंड ऑफ लोनलीनेस लैक ऑफ पावर पुट्स देम इन अ सर्टेन पोजीशन. माफ कीजिए मैं एकदम किताबों के नाम भूल जाता हूँ, कागज याद रहते हैं.
तो दोनों किताबें दोनों किताबों के आप निकलवा लेना आशीष. तब से आप क्या रिकमेंड करेंगी?
एक तो मैं रिकमेंड करूँगी एक मांगा सीरीज़ है, एक सीरीज़ है, शो है ऑन नेटफ्लिक्स. इट्स कॉल्ड ब्लू आइड सैमुराई. इट्स अ स्टोरी ऑफ रिवेंज. तो हटके है थोड़ा फ्रॉम जो हम बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ते रहते हैं. एक तो वो है और दूसरा आज क्योंकि वुमेन्स डे है और मुझे भी यहाँ आके पता चला है. तो एक बहुत अच्छा कॉमिक है ऑनलाइन अवेलेबल है. इट्स कॉल्ड यू शुड हैव आस्ट द मेंटल लोड, अ फेमिनिस्ट कॉमिक. इट इज़ बाई एमा. तो वो आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा. इट इज़ बेसिकली अबाउट हाउ हाउस होल्ड या मैनेजमेंट का जो एक इंटरनल लोड होता है वो हमेशा इज़ ऑन द फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली. तो दीज टू
बहुत अच्छे रिकमेंडेशन के बाद एक हल्का फुल्का रिकमेंडेशन मैं कर देता हूँ इंटरनेशनल वुमेंस डे को ही ध्यान में रखते हुए. एक YouTube चैनल है, बेसिकली BBC के लिए ये सीरीज़ बनाती हैं, कंक ऑन अर्थ. इतना मतलब कोई जीनियस ही इस तरह से सोच सकता है, मतलब स्क्रिप्टिंग से लेके. और वो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, दैट लेडी हु होस्ट दिस शो, इट्स ब्यूटीफुल
शो
कंक ऑन अर्थ. और मेरे जानकारी में बहुत लेट आया ये, BBC पर ये चलता है. और हमेशा ही कहा जाता है ना कि जीनियस लोग ही दुनिया को चलाएंगे या आगे बढ़ाएंगे. जो हमारी मीडियोक्रिटी है उसको पकड़कर उसके हिसाब से दुनिया को देख पाने की जो नज़र है वो किसी जीनियस के अंदर हो सकती है. तो उस सवाल को, उस चीज़ को समझ पाना, पकड़ना बहुत मज़ेदार, बहुत ही ह्यूमरस, मतलब लगभग लोट पोट कर देने वाला ह्यूमर है उसमें.
हाँ, इतनी संजीदगी से इतना हंसाया है.
एग्जैक्टली. तो ये मेरा रिकमेंडेशन है. इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे. तपस्या, नितिन और रवि, आप सब लोगों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद.
शुक्रिया हमें बुलाने के लिए.
थैंक यू फॉर योर सब्सक्रिप्शन. You're changing the world by changing the way news is funded. For the smoothest News Laundry experience, download the News Laundry app. It is the best way to listen to our paywall podcasts. And you'll also get access to all free News Laundry shows. keep us ad-free and subscriber-funded. Help us grow. Tell people who listen to you to pay to keep news free. Subscribe to News Laundry. Keep journalism independent.